श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 15 शरीर वांग मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः। गलत बोल रहे हैं, शरीर वांग मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चायते तस्य हेतवः। इसका श्लोक का अर्थ बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधा है। शरीर से, वांग मतलब वाणी से, मन से, यत कर्म जो भी कर्म करना कोई नर प्रारंभ करता है, चाहे वह न्यायम अर्थात सही हो या विपरीतम अर्थात गलत हो, उसके कारण तस्य पंचते हेतवः, उसके ये पांच कारण होते हैं। आप माइक पर बताइए अर्थ क्या क्या हमने बोला अभी। माइक ऑन है? हाँ, यस, बोलिए।
शरीर,
हाँ बोलिए बोलिए।
वाक,
वांग मतलब
वाणी,
वाणी मन,
मन
यत कर्म मतलब जो भी कर्म हम शरीर से, वाणी से, मन से करते हैं, प्रारभते मतलब प्रारंभ करते हैं, नरह मतलब इंसान, कोई भी कार्य शरीर से, मन से, वाणी से आप कुछ प्रारंभ करते हो तो चाहे वो गलत हो, गलत का कौन सा अर्थ है पार्थ कृष्ण प्रभु? गलत मतलब विपरीतम, और सही मतलब न्यायम, न्याय अन्याय का कोई भी कार्य करता है उसके ये पांच कारण होते हैं। पांच कारण कौन से हैं? शरीर, कर्ता यानी जीवात्मा, इंद्रियां यानी कर्णम, और चेष्टा, चेष्टा और देव अर्थात भगवान। बहुत स्पष्ट उत्तर है, सॉरी इसका अर्थ है। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो कुछ भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। इसमें कुछ समझाना नहीं, एकदम स्पष्ट है। टीका में बहुत सिंपल बोल रहे हैं, न्यायम का अर्थ है शास्त्र के अनुसार, और विपरीतम का अर्थ है शास्त्र की आज्ञा को अवमानना करके। बहुत सिंपल है तात्पर्य। इस श्लोक में न्याय उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। कुछ समझाना ही नहीं, एकदम स्पष्ट है। शास्त्र के अनुसार चलेगा तो सही है, नहीं तो गलत है। किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए पांच कारणों की आवश्यकता होती है। एकदम कुछ एकदम इजी श्लोक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य अकृत बुद्धित्वान् सपश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। और इसकी चर्चा हमने कल भी करी थी कि किसी भी क्रिया को करने में ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा के बिना हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है कि बिना परमात्मा के कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है उसमें इंडिपेंडेंट है, मुक्त है, तो वह बहुत बड़े अज्ञान में है। तो यही बात भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं उसमें इंडिपेंडेंट है, तो वह व्यक्ति गलत है, वो सही तरह से नहीं देख पा रहा। एक आपने कहावत सुनी है, तेरे मन के कुछ और है और कर्ता के कुछ और, सुनाइए कहावत। तेरे मर्द, हाँ गाना है, गाना तो नहीं है, पता नहीं गाना बना दिया होगा, लेकिन अर्थात हम या फिर क्या कहते, हाँ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान जो है वह प्रस्ताव रखता है और भगवान उसको क्रियान्वित करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर क्रिया के पीछे भगवान पे हम आश्रित हैं। ये बात भगवान कह रहे, जो नहीं देख पाता है और केवल अपने को कर्ता देखता है वह दुर्मति है, उसकी मति गलत है। मति का मतलब ये भी होता है मानना, हम इसको मानते हैं, ये मेरा मत है, तो ये गलत मति है, ये दुर्मति है जो इस प्रकार से अपने को अलग इंडिपेंडेंट करता मानता है। जैसे ये मेरा हाथ कार्य तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाथ अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। हाँ, मैं इसे क्रियान्वित करा रहा हूं, ये मेरे शरीर का एक भाग है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, और ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि भगवान को उसमें सैंक्शन ना करना पड़े, मेरी बात, मेरे कर्मों को भगवान को सैंक्शन ना करना पड़े, सैंक्शन मतलब अनुमोदन ना करना पड़े, शास्त्र के विरुद्ध ना हो, भगवान मेरी क्रियाओं से प्रसन्न हो, ये एक सच्चे व्यक्ति का, सच्चे कर्ता का भाव होना चाहिए। ये आगे बताएगी, सात्विक कर्ता इस प्रकार का होता है। अनुमोदन का मतलब होता है आप करना ही चाहते तो करो, सपोर्ट करना नहीं होता है, यही अंतर है, सपोर्ट करना और अनुमोदन करना। अनुमोदन का मतलब यहां पे है, अनुमोदन शब्द यूज कर रहा हूं, मुझे हिंदी में हाँ अप्रूव कह लीजिए, सैंक्शन करना मतलब हाँ ठीक है करना चाहते हो करो, परमिशन दे देना। हाँ मतलब ये नहीं कि अनुमोदन शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि अनुमोदन का मतलब सपोर्ट ही होता है जो आप बोल रहे हैं। मैं मुझे आप हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, सैंक्शन का मतलब होता है कर दे रहे हैं, ठीक है करो, तुम चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान उसे पसंद करते हो। भाई हम जैसे भोग करना चाहते हैं, वैसे सिंपल सी बात है, हम गुलाब जामुन खाना चाहें जो भोग जो अर्पित नहीं है भगवान को, छूट देना, लाइसेंस देना, हाँ ऐसा ऐसी बातें बोल सकते हैं, अलाउ कर देना, मोहर लगा देना, हाँ ठीक है। भगवान की इच्छा के बिना जीव भोग भी नहीं कर सकता है, तो भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा भोग करे, क्योंकि भगवान ने गीता में पहले ही बोल के रखा है इसमें दुख है, लेकिन फिर भी जब हम करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है करो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कोई पसंद है, अनिच्छा से भगवान इस बात को करते हैं, उनको पसंद नहीं आता। अगर आपके पास माइक है तो कृपया मुझे माइक पे बोलिएगा।
जो प्रभुपाद जी का पुत्र था वो yes. उंगली छुआना चाहता था चलते फैन में,
yes.
तो छुआ ही दिया,
yes. तो ये चीज है कि भगवान चाहते नहीं कि हम लोग भोग में पड़े, कभी नहीं चाहते, ठीक है। ओके ठीक है, मैं पढ़िए। तो फिर क्या होता है, यद्यपि जीव कर्ता तभी होता है जब उसे भगवान से अनुमति प्राप्त होती है, अनुमति शब्द है, अनुमति इज द बेस्ट वर्ड, अनुमोदन नहीं, अनुमति प्राप्त होती है, और भगवान द्वारा दिए गए शरीर और इंद्रियों पर वह निर्भर करता है, फिर भी वह मूर्ख होगा अर्थात दुर्मति जो जीव को अकेला कर्ता मानेगा किसी कार्य को करने में, क्योंकि उसमें ज्ञान का भाव होता है, वह देख नहीं पाता और एक अंधे इंसान की तरह होता है। समझ में आ रहा है, शरीर कौन दे रहा है, भगवान दे रहा है, इंद्रियां कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं, प्राण का शक्ति कौन से कैसे काम कर रही है, भगवान की अध्यक्षता में। कल यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट हुआ कि कितने प्राण होते हैं, पांच होते हैं कि नौ होते हैं, तो हमने कहा ना तो हमको पता है पांच होते हैं ना हमको सही से पता है नौ होते हैं, लेकिन प्राण कार्य कर रहे हैं, अर्थात हमारी शक्ति से, हमारे मैनेजमेंट से नहीं चल रहे। अगर मालूम भी हो पांच तो ये मालूम है कैसे काम कर रहे हैं, ये भी नहीं पता है, तो भगवान चला रहे हैं उसको। तो इसलिए अगर जो व्यक्ति मूर्ख होगा वो सोचेगा कि नहीं सब कुछ अपने आप हो रहा है।
Yes. तो जो चीज गलत होती है उसमें भी भगवान सिमिलरली जिम्मेदार होते हैं,
जिम्मेदार नहीं होते हैं, संलग्न होते हैं, निर्लिप्त होते हुए संलग्न होते हैं, यही बात खूब चर्चा करी गई थी कल, निर्लिप्त होते हुए संलग्न होते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे देंगे कि कोई व्यक्ति अगर हैंग किया जा रहा है, उसको फांसी दी जा रही है, तो जज उसमें इन्वॉल्व होता है कि नहीं, बताइए, बोलिए बोलिए क्या उत्तर
है। एक तरह से तो डिसीजन दे रहा है ना, ही इज लाइक नॉट बायस्ड
किसी, यस, तो यानी कि उसमें वो निर्लिप्त होते हुए इन्वॉल्व हो रहा है, उसके डिसीजन के बिना किसी को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके ऊपर किसी को भी फांसी देने का या धन देने का पुरस्कार देने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो तटस्थ नहीं, क्या कहते, तटस्थ नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, तट में निरपेक्ष, निरपेक्ष उदासीन, यस उदासीन, उदासीन शब्द, उदासीन होकर के वो कार्य को कर रहे, संपादन कर रहे हैं, गुड शब्द, अच्छा शब्द है, उदासीन रह करके, निरपेक्ष कैसे करके, ठीक है माइक पे बोलिए नहीं तो एकदम चुप। हाँ
भगवान को भी
ऑन भी तो करिए उसको,
भगवान को भी उसका वो कर्म करता है उसके साथ, भगवान को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है।
अभी हमने क्या सीखा था, कोई भी कर्म करने में भगवान को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, अन्यथा नहीं होता है कोई कार्य। चौदहवें श्लोक में हमने क्या सीखा था, कोई कार्य का फल मिलता ही नहीं, भगवान ही फल देने वाले हैं और कोई नहीं देने वाला। ऑन क्यों नहीं करते, ऑफ कर लेते हैं, बोली तो आवाज आनी चाहिए। यस,
जैसे दो पक्षी उपनिषद में बनता है, एक पक्षी
yes. एक पक्षी फल भोग रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है। देखिए ये कोई भी जो उपमा दी जाती है एक पर्टिकुलर बात को समझाने के लिए दी जाती है। यहां देख रहे हैं कि जीव को फल, एक पक्षी फल भोग रहा है, दूसरा देख रहा है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि फल का मैनेजमेंट करने वाला भी दूसरा पक्षी ही है जो देख रहा है। प्रकृति अपने आप कुछ फल नहीं दे रही है, वो भगवान के संयोजन में चल रहा है। माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, स्पष्ट है। वहां केवल ये बात बोलने के लिए ये उपमा को दिया जा रहा है कि भगवान निर्लिप्त है और वो देख रहे हैं कि जीव भोग कर रहा है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि भोग की व्यवस्था भी भगवान ही करा रहे हैं। अब इस चीज को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देना चाहूंगा, अगर इंग्लिश आती है तो टीका को देखिएगा। 15 जब वहां भगवान बोलते हैं ना, ममते जो संभव मुझसे ही सूर्य की चंद्र रोशनी आती है, तेज आता है, 15वें अध्याय में, तो वहां पे आचार्य समझाते हैं इस बात को, बहुत गंभीर और रहस्यमय बात, कि सूर्य उगता क्यों है। ये क्या प्रश्न है गीता का कि सूर्य क्यों उग रहा है, तो वहां आचार्य बताते हैं कि जैसे सूर्य उगता है तो वो कर्मियों को प्रेरणा देता है कि आप भोग करो, वो अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। सारे कार्य का उद्देश्य भोग होता है, विचार कीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। और वही सूर्य भक्तों को प्रेरणा देता है भगवान की भक्ति करो। तो भगवान इस प्रकृति में शक्ति देने के द्वारा जीवात्माओं को भोग और योग दोनों करने की प्रेरणा दे रहे हैं। चंद्रमा को देखकर रोमांटिक गाने लिखे जाते हैं, वह चंद्रमा को देखकर कृष्ण का स्मरण भी होता है। ये बहुत गंभीर बात है जो वहां पे ट्विस्ट होती है, पूरी तरह से चेंज होती है, किस प्रकार से भगवान सबके हृदय में बैठे हुए फिर एकदम से भगवान बोलने लगते हैं कि मैं ही चंद्रमा का प्रकाश दे रहा हूं, सूर्य का प्रकाश दे रहा हूं, क्यों बोलने लग जा रहे हैं, मैं ही खाना हजम कर रहा हूं, क्यों बोल रहे हैं। यानी भोग की सुविधा भी भगवान दे रहे हैं और योग की शक्ति भी भगवान ही देंगे, उसी शरीर से तो भजन कर रहे हैं। आप खाएंगे नहीं तो हरे कृष्ण कैसे बोलेंगे, और हरे कृष्ण भी जीभ से बोलेंगे तो जीभ कहां से शक्ति प्राप्त हो रही, भगवान से प्राप्त हो रही। तो ये दोनों ही कार्य भगवान करा रहे हैं, सुविधा देने भगवान करने की, शक्ति भी और प्रेरणा भी। कौन बुद्धि दे रहा है कि सुबह उठ करके ब्रश करके मंगल आरती जाइए, भगवान दे रहे हैं। यस, प्रेरणा भी दे रहे हैं और शक्ति भी दे रहे हैं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और क्या बोलते हैं, खाना हजम कौन कर रहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। अब हम उसकी चर्चा तो आज नहीं कर सकेंगे, लेकिन कभी दोबारा समय मिलेगा तो 15वें अध्याय के श्लोकों की चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर बात बताई गई है। ठीक है, सूर्य है, चंद्र है, सभी कुछ भगवान को, भगवान उसके द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को, तो भोग करने के लिए या योग करने के लिए। एकदम स्पष्ट रूप से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा अगर भाई उनका माइक तो रिलीज करो, ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक करने की वाली बात है, मजाक की बात है ये। हाँ तो वहां तक पहुंचना चाहिए।
जैसे प्रभु जी प्रेरणा की बात में जो भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृति, तो उसमें परमात्मा के रूप से प्रेरणा देते हैं।
हाँ, परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते हैं भोग करने के लिए, उसमें बता रहे हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, अर्थात तुमने पहले भोग किए थे अब फिर स्मृति कर देते हैं, चलो फिर से भोग करो, और ज्ञान देते हैं भोग कैसे करो। और भगवान के रूप में ये स्मृति देते हैं कि आपने कैसे भक्ति करी थी, फिर से ज्ञान देते हैं भक्ति करने का। ठीक है, यू हैव टू बी सीरियस इन द क्लास, हाँ मजाक मत करो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से देख रहा है कि वह अकेला करता है तो वह भगवान की शक्ति को नहीं देख पा रहा, ये बात देखनी चाहिए। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता। पढ़िए अनुवाद, तात्पर्य किसके पास है, आपके पास है, पढ़िए प्रभुपाद जी का तात्पर्य। संतोष कृष्णा पढ़िए।
मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान,
प्रभुपाद जी संबंध में बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि प्रभु भगवान आप मेरे हृदय में बैठे हैं और आप मुझे भुला सकते हैं, अपनी विस्मृति दे सकते हैं, और आप मुझे स्मृति भी दे सकते हैं कि मैं हमेशा हरि नाम करके आपका स्मरण कर सकूं। प्रभुपाद जी का एक प्रेयर बोली गई थी यहाँ पे, बहुत अच्छा गया। अब आप मेरे हृदय में बैठे हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, तो कृपया मुझे अपनी स्मरण करने की शक्ति दीजिए। पढ़िए।
यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे।
ये भी आप लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जब विराट पुरुष का वर्णन आता है, सब कुछ सारे देवता आ गए, जब तक भगवान से प्रवेश नहीं किए कुछ क्रियान्वित नहीं हुआ। हाँ, नोद तिष्ठति तथा विराट, ऐसे करके जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते। यस,
जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही करता मानता है।
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी जो बात आ रही थी कि भाई स्मृति कौन दे रहा है, ये विश्वास है ना कि जब हम सो जाते हैं तो मर जाते हैं, ये तो समझ में आता है, पूरा भूल जाते हैं जगत को, सपना हम ठीक है, अगर गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो माना जाएगा ना मर गया, उठने के बाद हमको कितना स्वाभाविक लगता है ना कि हमें अपना नाम याद आ जाता है, हमको नाम याद आता है, हमको याद आता है कि हमें पेस्ट करना है, कितना स्वाभाविक होता है। मेरे का अनुभव है जीवन में, एक बार मैं बाली में था तो मैं बाथरूम में गया तो पेस्ट की जगह साबुन को उसके ऊपर लगा लिया था, जो होता है ना शेविंग क्रीम होती, उसको टूथ के मुंह में डाला नहीं था लेकिन ब्रश के ऊपर ऑलमोस्ट लगा दिया था, लगाने वाला था, फिर मुझे एकदम से याद आ रही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। तब मुझे समझ में आया कि सामान्य क्रियाओं में भी हम बिल्कुल भगवान पे आश्रित हैं, ये एकदम से एक क्षण में भगवान चाहे तो हमें घुमा देंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यस, हो जाता है, भगवान अंदर से घुमा सकते हैं पूरी तरह से। कितनी बार भ्रम हो जाता है, अगर आप कुछ बोलना है तो मैं भी बोलिए।
कई बार दिशाओं में भी भ्रम हो जाता है,
आप थोड़ा आगे आ सकते हैं। हाँ जी, तो ये दिशा का भ्रम हो सकता है और बहुत बार हम भ्रमित हो जाते हैं, तो इसका ये देख लेना चाहिए कि ये पूरा कंट्रोल भगवान का है। ये कभी आप देखिए कि कुछ लोग कहीं जाने वाले नहीं होते, अकस्मात उनका प्लान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं उसमें, सुना आपने कभी ऐसा? तो ये सब भगवान काल चोदित भगवान के द्वारा ये क्रियान्वित हो रहा है। तो हमें देखना चाहिए कि सबके पीछे भगवान करने वाले हैं। आपने ऑन नहीं किया, ऑन नहीं किया माइक को।
जिसने जाना होता है बाय चांस वो रुक जाता है, उसकी जगह कोई और चला जाता है।
तो हर व्यक्ति के उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे सीखने वाला क्या काम है, जब हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने प्रार्थना करी कि मेरे शब्दों में शक्ति दीजिए ताकि ये भक्ति को ग्रहण कर सके, आपके नाम में श्रद्धा को से स्वीकार कर सके। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे वाणी के मात्र से लोग करने लग जाएंगे, और कुछ लोगों को नहीं करवा करके भगवान आपको सिखा देंगे कि नहीं कर रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? शुरुआत में ऐसा होता था, मैं सोचता था कि फिलोसफी बोल बोल के सबको प्रचारित करूंगा, वो लोग नहीं करेंगे, कितना भी फिलोसफी बोल दीजिए नहीं सुनेंगे वो। तो ये हृदय में नम्रता की भावना हमेशा रहनी चाहिए कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं भगवान, मेरी वाणी से ये लोग आपकी भक्ति में आए, ऐसी शक्ति आप मेरे को दीजिए। ठीक है, ओके। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही करता मानता। रिकॉर्ड बहुत इंटरेस्टिंग बात है, डिप्रेशन का कारण क्या है? माइक पे बोले हैं, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा जी। यस, हाँ,
डिप्रेशन का एक मेन कारण है कि जब
इस श्लोक से रिलेट करके बोलिए, मुझे इंडिपेंडेंट आंसर नहीं चाहिए, इस श्लोक से इंटरप्रेट, हाँ एकदम श्लोक से समझ में आ जाएगा। यस, हाँ,
जब अपने आप को परम करता समझते हैं,
वेरी नाइस। जब हम सोचेंगे कि सारे कुछ मेरे द्वारा हो रहा है तो हम डिप्रेस हो ही जाएंगे, हमें लगा हमसे कैसे होगा, और डिप्रेशन का मतलब यही नेगेटिव भावना, मतलब परेशान हो जाएगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भाई, तुमसे कुछ ना तो तुमसे कुछ हो सकता है ना तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, ये समझ में आई? दूसरी बात, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत कृपातम हम वंदे श्री गुरु तरणम परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, इस बात का आश्रय लेना चाहिए। स्वयं कृष्णदास कविराज को स्वामी बोलते हैं, 90 साल का हो गया हूं, मुझे दिखता नहीं, मेरे हाथ हिल रहे और फिर भी मैं लिख रहा हूं, ये कितने आश्चर्य की बात है। वो जान रहे हैं कि महाप्रभु उसको लिखवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब 17वें श्लोक को देखेंगे हम, याचक आखिरी श्लोक है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् नहंति न निबध्यते। इसका अर्थ बहुत समझ में आ रहा है, यस, जिसका न अहंकृत भाव हो, जिसका अहंकृत भाव नहीं है, तो मैं करने वाला, अहंकृत मैं करने वाला, ये सब मेरे द्वारा किया गया है, ये भाव नहीं होता है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसका जो बुद्धि है वो कर्म फल की आसक्ति में लिप्त नहीं होती, अर्थात मैंने किया है तो मैं भोगूंगा, ये भावना से दूषित नहीं होती है। हत्वापि स इमान लोकान, अर्थात भीष्म इत्यादि जितने भी लोग हैं इनको तुम मारोगे भी तो भी न हंती न निपद्यते, न तो तुम उनको मार रहे हो और न तुम उनका न तुम उससे बंधन में पड़ोगे। ये बात समझ में आने वाली, क्यों भगवान इस बात को बोल रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में बोला कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है, अब इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो समझता है उसका फायदा क्या है। आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, मैं एक निमित्त मात्र हूं, ये भगवान आगे भी बताएंगे कि निमित्त मात्र भवे सभ्य साची, तो निमित्त मात्र हूं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब ये एक श्लोक डेंजरस है, कोई किसी का मर्डर कर दे कहे मैं तो भगवान का निमित्त मात्र हूं, तो क्या उत्तर है आपका? माइक पे बोलिए अगर किसी को पास उत्तर है। मैं मान लीजिए किसी का मर्डर, मैं तो करने वाला हूं नहीं, तो मैं आपका मर्डर कर देता हूं, तो मैं तो मुझे तो दोष नहीं लगना चाहिए, ना यमराज जी के पास जाना चाहिए मेरे को, ना पुलिस पकड़नी चाहिए। गीता में लिखा है, देखिए कई सही है भाव अंडरस्टैंडिंग है। माइक दीजिए प्रभु जी को, माइक दीजिए।
यस, यदि उसका अहम भाव नहीं है तो।
अच्छा, यही मैं फंस गया आप, मतलब मैं करने वाला नहीं तो मैं किसी को भी गोली मार देता हूं। देखिए, हाँ ओके बोलिए।
जब तक वो पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार या पूरी तरीके से मोड ऑफ गुडनेस में नहीं, तब तक यह ज्ञान टिका नहीं रह सकता जब तक कर्म कर रहा है पूरी तरीके से। अहम भाव आ ही जाएगा,
अहम भाव आ जाएगा एक बात, और दूसरी बात क्या ये शास्त्र अनुमोदित है? जब इस श्लोक शास्त्र को पढ़ रहे हो तो यही श्लोक पढ़ोगे, और कोई नहीं पढ़ोगे। शास्त्र अनुमोदित है कि किसी को ऐसे बिना बात के मार दिया जाए? यस, सारे कुछ पाते ना।
वो आखिर किसके द्वारा आदेशित है जो वो कर रहा है?
यस, मेन बात यही, आगे जाके बात यही आएगी। ज्ञान, वो ज्ञान क्या शास्त्र से है या अपने मन से है? तो शास्त्र से होना चाहिए ना, शास्त्र में लिखा है कि किसी को ऐसे ही मार दीजिए।
जैसे आपने कहा था कि मिलिट्री में कितनों को भी मार सकता है,
अभी प्रभुपाद अभी इस बात को बोलने वाले हैं।
घर अपनी मनमानी से कुछ
मनमानी से नहीं कर सकता, तो केवल यही नहीं है कि मैं मारने वाला नहीं हूं तो मैं कुछ भी कर लूंगा। इंडिपेंडेंट एक्शन इज नॉट अलाउड, ठीक है? जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, बुद्धि मतलब बंधी नहीं है मतलब कर्म फल के आसक्ति से बंधी नहीं है, वह संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। देखिए, जब बात बोला जा रहा है मनुष्य को मारता, मतलब ये एक सैंपल है, अर्जुन के लिए सैंपल है, वो मारने का कार्य कर रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जो उनका रूप अलग होगा, लेकिन उसको बंधन में नहीं पड़ेंगे अगर इस भावना से वो युक्त हैं कि ये क्रिया भगवान के लिए कर रहा हूं, और ये पता होना चाहिए कि ये क्रिया भगवान के लिए हो रही है। दो बातें हैं, भगवान के लिए कर रहा हूं और ये पता होना चाहिए भगवान के लिए कर रहा क्रिया हो रही। पहले आप सुनिए इस बात को, जैसे एक आर्मी का जवान गोली चला रहा है तो उसे पता है कि गोली आर्मी देश के लिए चला जा रही है, और उसे पता है कि वो खाली देश के लिए कार्य कर रहा है। घर में जब आकर किसी को गोली मार देगा तो वो जानता है कि देश के लिए नहीं है, ये मैं अपने लिए गोली चला रहा हूं। तो ये भावना पता होना चाहिए कि जो कर्म है खाली ये मान लेने से कि ये कृष्ण के लिए है, ऐसा नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कर्म कृष्ण के लिए है या नहीं है। अब कहे मुर्गा काटूंगा कृष्ण के लिए काट रहा हूं, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूं, तो क्या मुर्गा काटना कृष्ण के लिए है? नहीं है। जब हम क्रियाएं कर रहे हैं वो क्रियाएं समझना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, न्यायम होना चाहिए, और ये भावना होनी चाहिए कि कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण के लिए होना चाहिए। दोनों चीजें महत्वपूर्ण, न अहंकृत भाव करती नहीं है कि हम शास्त्र के विपरीत कुछ कर सकते, ठीक है? ओके, ना ही वह कर्मों से बंधा होता है। टीका को पढ़ लीजिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जिसके पास दृष्टि होती है देखने की? आचार्य प्रश्न उठा रहे हैं। वह व्यक्ति जिसके पास यह सोचने की शक्ति है, अर्थात भाव नहंकृत भाव, कि उसके हर कार्य भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं। आप क्यों नहीं देखते हैं? ठीक है, दरा करके उनके हिसाब से देखें। और इस कारण से वह कभी भी अपने को अकेला करता नहीं मानता, अर्थात न अहंकृतो। ये समझ में आ गया? भाव का अर्थ क्या है? उसका हर कार्य भगवान पर निर्भर करता है, और इसी कारण से वो हर कार्य भगवान के लिए करता है। और नाहंकृत मतलब मैं अकेला करने वाला नहीं हूं, सिंपल है। और जिसकी बुद्धि फलों की भोग फलों को भोगने की इच्छा से दूषित नहीं होती, अर्थात बुद्धिर यस्य न लिप्यते। इनके अर्थों को आप समझ पा रहे हैं? बुद्धि प्लान करती है, तो बुद्धि जब सोच रही है कि मुझे इस कर्म के फल को नहीं भोगना है, तो इससे समझ में आना चाहिए कि बुद्धि कर्म फल की आकांक्षा या अभिलाषा से लिप्त नहीं हो रही, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से युक्त है। ऐसा व्यक्ति भीष्म और अन्य सभी को इत्यादि को सभी को नहीं होना चाहिए, अन्य सभी इत्यादि को मारने के बाद भी नहीं मारता, अर्थात हत्वापि सैमान लोकान, और न ही वह उन सबको मारने के कार्य से दूषित होता है। मारते हुए भी नहीं मारता है, क्योंकि वो जान रहा, जैसे अगर अर्जुन के केस में देखें तो मारने की आदेश कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है, और भगवान ने यह भी दिखाया कि मेरा पूर्व नियोजन है, उसका वह पूर्व नियोजन है। भगवान ने 11वें अध्याय में दिखा दिया ना कि इनको मैं पहले ही मार चुका हूं, अब मैं उसको फिर प्रचार के ही फील्ड में लेके आता हूं। जिन लोगों को प्रचारित होना है, जिन लोगों को भक्त बनना है, वो पहले से डिसाइडेड हो चुका है। प्रभुपाद जी ने बोला था, मैं बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भक्त हैं, केवल समय हमें उससे अलग कर रहा है। तो हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि नहंकृत भाव का अर्थ ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करें, ऐसा नहीं कि हम कुछ करें नहीं, लेकिन अगर फल तुरंत नहीं मिलता है तो उसे डिप्रेस नहीं हो। ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा, शरीर नहीं लगाऊंगा, अपनी इंद्रियां नहीं लगाऊंगा, तो होगा भी नहीं। इसलिए मेरा भी एक रोल है, ऐसा ही दृष्टा दृष्टा। तो इस प्रचार के आंदोलन में अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा थी, हम लोग भी संकीर्तन आर्मी में है, तो हमारा भी उद्देश्य है, हमारे व्यक्ति का एक रोल है संकीर्तन आंदोलन में, उसको अहंकृत भाव को छोड़ करके करना चाहिए। मैं किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकूं ताकि वो कृष्ण के और करीब आ सके, समझ में आ रहा है बात? और इसमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया कि माता जी पूछी, हम प्रीचिंग करने जाते हैं कुछ होता नहीं, कहते हैं महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, हमें अपना प्रयास करना चाहिए, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वह भगवान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अच्छे से नियोजन न करें। हम अपने, मैंने कल भी समझाया था, हम अपने से खूब अच्छे से प्रयास करें, जो रिजल्ट आएगा वो भगवान के ऊपर है। जैसे प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए गए थे तो कोई नहीं आया, तो उनके शिष्य थे वो रोने लगे, दुखी हो गए, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं बहुत सारे देवता आए थे, आप क्यों चिंता कर, और अद्वैत का तब भगवान प्रसन्न होते हैं। यहां तक शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा अगर कोई नहीं आया तो तुम चार दीवारों को प्रचार करो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यक्रम में कितने लोग आ रहे हैं, हमारा भाव क्या है, इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। अल्टीमेट सक्सेस हमारी यही है कि क्या है, समसिद्ध हरितोषण, भगवान हरि सुखी हो जाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। बट जब लिखा हुआ है कि भगवान श्रवण करने से सुखी होते हैं, कीर्तन करने से सुखी होते हैं, ये तो नहीं लिखा कि कितने लोग होने चाहिए उसमें। भाव का महत्व बहुत महत्व है, बहुत भाव का महत्व है कि हमारा भाव क्या है, इसीलिए भगवान इस बात को भाव को बता रहे हैं किस भाव से हमें करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति करते हुए भी उस किन कार्यों में लिप्त नहीं होता, नहीं फंसता, जो कि अर्जुन का प्रश्न था पहले अध्याय में कि मैं उनको मारूंगा तो क्या है, पापा में बहुत बड़ा पाप लगेगा और हमारे जो राज्य भी मिलेगा वह उनके रक्त से सना हुआ होगा, इस प्रकार की बातें कर रहे थे। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु, आपके पास है तात्पर्य, माइक दीजिए।
इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है।
ठीक है, यानी कि ये कार्य करना ये कार्य नहीं करना, ये मुझे पसंद है वो मुझे नहीं पसंद है, और शास्त्र अनुमोदित है या नहीं, ना सब चीज अहंकार से उत्पन्न हो रही है। पढ़िए।
अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था।
ये लाइन आपको याद आ रही हो, प्रथम अध्याय में वो बोल रहे हैं कि भाई मारूंगा तो पाप लगेगा और नहीं मारूंगा तो क्या बोलते हैं, मार के अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा तो मुझे क्या फायदा, मुझे क्या सुख मिलेगा, ये अहंकार का भाव है, मेरा क्या सुख है इसमें, मेरा क्या फायदा है, ये बात से वो प्रभावित है। ध्यान देना चाहिए सब भगवान की योजना से हो रहा है, भगवान के शुद्ध भक्त है। यस,
यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता।
मोह मतलब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। यस।
जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण,
आप एक सिंपल सी बात सोचिए, जब लोग को कहा जाता है कि 50% भगवान की सेवा में लगाओ तो क्या दिक्कत होगी? यह अहंकार का भाव कि सब कुछ तो मैंने अपनी मेहनत से किया है, मैं भगवान को क्यों दूं? सिंपल सी बात है। जबकि ये नहीं सोचते हैं कि जो कुछ भी आ रहा है सब भगवान की कृपा से है, भगवान आपको 50% यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, और वो भी इस लाइसेंस के संग की कोई कर्म फल नहीं लगेगा। बढ़िया।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भुगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है।
बहुत सिंपल सी बात है। तो यानी कि अब अगले इसमें आएगा कि किस प्रकार के ज्ञान होते हैं, तीन प्रकार के ज्ञान क्या होते हैं, तीन प्रकार के कर्ता क्या होते हैं, उनकी चर्चा आगे की जाएगी। यहां तक तो कोई प्रश्न है? स्पष्ट है आज के श्लोक? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।